ओम शांति। आज की मुरली सबने सुनी? किसने नहीं सुने? हाथ उठाओ। नहीं सुनी? क्यों? कहां बिजी था? सो गया था तो बाद में पढ़ना चाहिए ना। और सुनने के बाद किसने किसने पढ़ी है सारे दिन में? कम से कम एक बार हाथ उठाए। नहीं पढ़ा? जो नोट्स लिख के रखे हैं उसको रिपीट किया? नहीं किया? किया। आज की मुरली कितनी प्यारी थी। हाँ, बाबा ने कितना नशा चढ़ाया, कितना प्यार किया और कितना प्यार बच्चों से भी कराया, है ना? अभी हर एक 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 पॉइंट बताएंगे। आज बाबा ने अपने लिए क्या बताया? मुरली तो हम सब सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनते सुनते ये नहीं समझने मुरली बाबा सबके लिए कह रहा है। नहीं, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है? कोई ऐसी एक बात आपने चुना है? हाँ, चुना है ना, वो बता देना। बताओ माता। अच्छा, गुलदस्ता भी दिया और बैज भी दिया और स्वागत किया। हाँ, मुझ पत्थर को हीरे जैसे बनाया। हाँ, देखो बाबा ने बोला सत्युग गोल्डन एज है, लेकिन संगमयुग क्या है? उससे भी बढ़कर डायमंड एज है। और बाबा को जाना, पहचाना और माना। हाँ, बाबा ने बोला लौकिक में क्या थे हम? अनाथ से। माँ बाप पुकारते थे लेकिन जानते नहीं थे, अनाथ थे। अभी क्या बन गए? सनात बन गए। हाँ, सुखों के तरह तरह के सुखों के झूलों में बिठा के झुलाता है ना? और माता जी और कौन सुनाएंगे? शांति का दान, शांति का, सुख का, खुशी का दान देते रहो। क्यों? जो जिसके पास होता है वही देता है ना। तो बाबा से हमें क्या मिला है? शांति मिली है, खुशी मिली है, अतीन्द्र सुख मिला है, उनको दान करते रहना। और क्या कहा माता जी ने? कल्याण का है। तो बाबा ने कहा आज ये बताया कि उसका धंधा क्या है, काम क्या है बाबा का? विश्व का कल्याण करना ही उसकी सेवा है। तो बच्चों की सेवा करते हुए क्या होना चाहिए? वही होना है। हाँ, निर्बंधन बनाया। शुद्ध होना चाहिए। पंख लगाया। हाँ, अगर सारी मुरली को हम ध्यान से देखा जाए, बाबा ने तीन बातों पर जोर दिया है या तीन बातों का स्पष्ट किया है। सबसे पहली बात है स्मृति। स्मृति अर्थात याद रखना। दूसरा है समय, घड़ी। तीसरा है प्राप्ति, है ना? तो बाबा ने सबसे पहले हमें स्मृति दिलाई, बच्चों को क्या स्मृति होनी चाहिए, रहनी चाहिए, कौन सी स्मृति दी? नहीं, मुरली से बताओ, आज बाबा ने कौन सी स्मृति, सबसे पहले कौन सी स्मृति दिलाई? हाँ हाँ भाई जी, आप बताओ। यही बात बाबा ने साकर मुरलियों में भी कहा है। क्या कहा है? बचपन के दिन भुला न देना। तो आज की मुरली में कौन सी बात थी? वो घड़ी याद करो, वो सुहावनी घड़ी, अनमोल घड़ी, कौन सी थी? उस घड़ी में दो है, एक है जब बाबा को हमने जाना, बाबा का परिचय हमें मिला, मेरा परिचय मिला, और जब हमें उस पर विश्वास हो गया, निश्चय हो गया, तब उस दिन हमारी अवस्था क्या थी, याद है? याद करो, सब कुछ भूल जाते उस समय, है ना? न घर, न मित्र संबंधी, कहाँ हूं, क्या हूं, कैसे हूं, कुछ भी याद नहीं, सब कुछ भूल जाता है पहला दिन। फिर सेकंड घड़ी, दूसरी घड़ी कौन सी है? जब हम बाबा को साकार में आकर मिलते हैं मधुबन में, वो भी बहुत अनमोल घड़ी। तो इसलिए बाबा कहते इन घड़ियों को भूलो नहीं, बार बार स्मृति में लाओ। जब भी मन उदास होता है, बाबा ने क्या कहा, मधुबन में आ जाओ, है ना? वहां होते हुए भी यहां आके बैठ जाओ, बाबा का कमरे में बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ हिस्ट्री हॉल में, नहीं तो शांति स्तंभ पर जाओ, नहीं तो खुटिया में जाओ। ये क्या है, सब स्मृतियां है ना, याद है। श्री बाबा कहते याद करो, जो जो संगम युग में हमें मिला है उसके एक 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 याद करो। कैसे? बाबा ने मिसाल सुनाया, कौन सा सुनाया? बाबा मिलते हम क्या बन गए, क्या बन गए? अनाथ से सनात बन गए। सनात का अर्थ दो होते हैं, सनात माना क्या है, जिसको जन धन तन मन धन चार जो वस्तु है वो सब होते हैं, और सनात नाथ माना कौन, मालिक, श्रेष्ठ मालिक बन जाते हैं बाबा मिलते ही। क्यों? तो बाबा का जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी है, बच्चों की है ना, हमारी। अनाथ से सनात बन गए, फिर और क्या बन गए, कई चक्रों में लौकिक में कहां थे, तरह तरह के चक्रों में फंस गए थे, तो बाबा मिलने के बाद क्या बन गए, स्वदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती महाराजा बन गए, है ना? तो इस तरह बाबा कहते हैं स्मृति, जितने जितनी स्मृति शक्तिशाली होती है उतने उतने हमारी मानसिक अवस्था शक्तिशाली होती है। जैसे स्मृति वैसे वृत्ति, जैसे वृत्ति वैसे कृति, जैसे कृति वैसे संस्कार, जैसे जैसे कर्म हम करते हैं वैसा वैसा संस्कार बढ़ते जाते हैं। श्री बाबा कहते सबसे पहले कौन सी स्मृति दी, बच्चे तुम मेरे हो, और दूसरी स्मृति कौन सी आ गई, हम देह नहीं है, कौन है, देही आत्मा है, और तीसरी स्मृति हम यहां के नहीं है, हम यहां वाले समझ के बैठे हुए थे ना, यही घर यही मकान यही सब संबंधी सब अपने यही है और कुछ है ही नहीं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, कौन सी स्मृति दी, बच्चे तुम तो यहाँ पाठधारी हो, टेम्पररी ड्रेसिंग रूम में बैठ के ड्रेस पहन के अपना नाटक दिखाने आए हो, यहाँ बैठने के लिए नहीं है ना। ये शरीर रूपी रंग बिरंगे कपड़े पहन के, कोई माँ बन के, कोई बाप बन के, कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के, हाँ पार्ट बजाने आए हैं। तो इस स्मृति से क्या होता है माता है, क्यों बाबा क्यों ऐसे बोलते हैं माताओं से, मोह के जब भी बात आती है माताओं से पूछता है, ऐसा मानते हैं आप? हाथ उठाओ जो मानते हैं माताओं में मोह ज्यादा रहता है। सिर्फ दो ही माता है, बाकी में मोह नहीं है। नहीं, माताओं में प्यार बहुत रहता है, लेकिन वो प्यार गड़बड़ हो जाता है ना, खराब बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, अति प्यार, दैहिक प्यार, अपनापन जो होता है ना, सिर्फ मेरे से पूछे, मेरे पास ही रहे, मेरी बातें माने, हाँ मेरा बच्चा बन के रहे, ये इसको मोह कहा जाता है। प्यार माना विशाल, सब अपने अपने सबके, ये इसलिए माताएं बहुत प्यारी होती है, प्यार बहुत होता है उनमें, पालना की शक्ति बहुत होती है, लेकिन वो थोड़ा जिस्मानी हो जाता है तो क्या होता है, मोह बन जाता है। वो बाबा कहते हैं वो छोड़ो, तो बाबा इतनी सारे स्मृतियां हमें दी है, इसलिए ये इस संगम युग में अथवा ये सहज राज योग, बाबा जो योग सिखाते हैं ना, इसका आधार क्या है, स्मृति, स्मृति रखना। जितना जितना आप स्व के प्रति, बाबा के प्रति, ज्ञान के प्रति स्मृति करते हैं, स्मृति रखते हैं, स्मरण करते हैं, उतना उतना आपको योग अच्छा लगता है। इसलिए योग का आधार ज्ञान है। कई लोग समझते हैं ज्ञान अलग है योग अलग है, नहीं, योग का जो मूल आधार है ज्ञान। आप जितना जितना ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान का चिंतन मंथन करते हैं, उतना क्या होता है, योग में अनुभव होता है, योग लगता है। तो दूसरी बात है समय। आज बाबा ने समय को भी याद दिलाया, कौन सा समय, संगम का समय, उसके साथ साथ उससे पहले जो आप बाप के जिस समय बने हैं ना, वो समय की याद दिलाया, सुहानी घड़ी, सुहावना घड़ी, अनमोल घड़ी। क्योंकि बाबा कहते देखो बच्चे, कल की साकार मुरली में बाबा ने बताया था, पूरे कल्प आपको बाबा की पालना नहीं मिलती, कब मिलती है, संगम पर मिलती है। 63 जन्मों तक तुम सजनिया बन के क्या किया, बुलाते रहे साजन को, मिला नहीं मिला, तो यही समय है जो बाबा हमें मिला। इसलिए समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। बाबा नहीं मिलेगा, अब बाबा नहीं मिलेगा तो संगम युग भी नहीं मिलेगा, है ना? तो संगम युग नहीं मिलेगा तो फिर पूरे कल्प का भाग्य नहीं मिलेगा, तो भाग्य नहीं मिले तो हम क्या हो गए, अभागे हो गए। इसलिए बाबा आज भी कहा, बच्चे जैसे अनाथ सनात बनते हो, वैसे अभागन से भाग्यशाली बनते हो। तो इतना नशा चढ़ता है, बाबा इतना सारे क्यों सुनाता है, भूल जाते हैं। इसलिए रोज जो योग है ना, योग में हमें भिन्न भिन्न तरह तरह के अनुभव करना चाहिए। जो रोज अलग अलग रूप से बाबा को याद करता है उसको योग में आनंद आता है। अगर आप एक ही तरह के योग करते हैं रोज तो बोर हो जाते हैं, नींद आ जाती है, उबासी आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। कई लोग तो योग करके थक जाते हैं, देखा होगा, उनके सारे बदन टूटने लगते हैं, सिर दर्द शुरू हो जाता है। कई लोग बोलते हैं मैं योग करके उठता हूं तो थक जाता हूं, क्यों? किसी आपको, किसी में से आपको होता है वैसा? योग करके थक जाते हैं? और योग में नींद किसको आती है? हाथ उठा, आता है रोज या कभी कभी? कभी कभी। और भाइयों में, भाई सब चुस्त रहते हैं? थोड़ा थोड़ा कभी कभी आता है। तो ठीक है, चलता है चलता है। तो समय देखो, हरेक अपना अपना दिनचर्या चार्ट बना के रखना चाहिए। मुझे किस समय क्या करना है, किस समय कौन सी स्मृति रखनी है, कौन सी बात याद करनी है, बाबा के साथ कौन सा संबंध जोड़ना है। क्योंकि हमारे जो योग है सिर्फ अमृत वेले या शाम को या आश्रम पर जाते उस समय का नहीं है, ये हमारा नेचुरल जीवन ही योगी जीवन है। जैसा आप लोग घर में रहते हैं, घर में रहते तो ये स्मृति रहती है ना, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्ची है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, पत्नी है, रहते हैं ना। इस तरह हमारा जो लौकिक जीवन जैसा होता है उसको अलौकिक में परिवर्तन करना चाहिए। कैसे? यही जैसा पति को, ये पति का पार्ट बजा रहा है, ये स्मृति रहती है। पतिदेवों को ये मेरी युगल है, ऐसा रहते हैं या ये युगल के रूप में पार्ट बजा रही है? बोलो भाई लोग, रहती है ऐसा स्मृति रहती है? नहीं रहती। रू रहान एक मेथड है, वो एक योग करने के विधि में एक स्टेप है, लेकिन रू रहान करना ही योग नहीं है। योग में सबसे पहले स्मृति करना पड़ता है, स्मृति, उसके बाद उसके स्मरण करना पड़ता है, उसके बाद उस बातों का मनन करना पड़ता है। मनन करते करते उस अवस्था में मग्न होना पड़ता है। ये चार अवस्था है, स्मृति, स्मरण, मनन, मग्न। इस इन बीचों में ये रूहान कब किया जाता है? जब हमें बुद्धि योग एकाग्र नहीं होता। क्योंकि जो आत्मा के जो पाप है वो कब भस्म होंगे? एकाग्रता में। उसको बाबा क्या कहते हैं? ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग माने कैसे? एकदम मन, बुद्धि और संस्कार बाबा में एकाग्र होना चाहिए, बाबा पर एकाग्र होना चाहिए, इसको योग कहा जाता है। इस अवस्था में हमारे स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं या वो जल जाते हैं, जिसको बाबा के शब्द में पाप जल जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले याद करना पड़ता है किस बात पर, मैं आत्मा अशरीरी हूं। ठीक है, अशरीरी होने के लिए स्मृति लाना। अशरीरी किसको कहा जाता है? अशरीर का रूप क्या होता है? अशरीर के गुण क्या होते हैं? अशरीर का धर्म क्या होते हैं? अशरीर आत्मा कहां रहती है? तो इस तरह आप चिंतन करते जाएंगे तो क्या होता है, मन अशरीर आत्मा में एकाग्र हो जाएगी। ये एक अवस्था स्मृति, और उसके अंदर उस स्मृति वो गुणों को जो स्मृति है बार बार करना चाहिए। एक बार करने से वो टिकने जाते हैं, हम मैं आत्मा हूं बोलते क्या हो जाता है, फिर दूसरा संकल्प आ जाता है, अरे आज वो बच्चों को किताब देना था या कुछ वो बताना था वो याद आता है, नहीं उसको रोकना, फिर क्या कहना, मैं आत्मा हूं निराकार हूं ज्योति स्वरूप। ये इसको बार 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 याद करने को, याद में लाने को क्या कहते हैं, स्मरण कहते हैं। फिर एक शब्द, जैसा आत्मा के एक रूप है अशरीरी, अशरीर माना ज्योति स्वरूप, उसमें उसके मनन करना, जैसा मैं आत्मा हूं तो आपको ध्यान कहां जाना चाहिए, आत्मा की तरफ। आत्मा कैसी है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप कहां है, यहां पर। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को देखो, बाबा कहते योग में देखो, यहां देखो अपने आप को, अपने भ्रुकुटी के बीच में अपने को देखो। यहां मधुबन में विश्वरतन दादा थे, किसी ने देखा विश्वरतन दादा को, वो कहते थे अगर आपको योग नहीं लगता, सुस्ती आती है तो क्या करो, सबसे पहले भ्रुकुटी के बीच में देखते बैठो, अपने को देखते रहो तो नींद उड़ जाती है। हम अपने को छोड़ते हैं तुरंत क्या करते हैं, परंदाम जंप लगा देते हैं, जो जितना फास्ट जंप लगाते हैं उतना फास्ट नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए बाबा एक विधि सिखाई है, सबसे पहले आत्मस्थिति में स्थित हो जाओ। तो उसके लिए पहले क्या करो, अपने आप को देखो, मैं आत्मा हूं भ्रुकुटी के बीच में ज्योतिर्बिंदु हूं, एक सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड मैं आत्मा निराकार हूं, फिर तुरंत मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूं। देखो अपने आप को देखो, मैं आत्मा निराकार, मैं अमर हूं, मैं आत्मा अविनाशी हूं। इस तरह अपने आप को वहां देखते देखते उस चिंतन में डूब जाते हैं, वो एकाग्र हो जाता है मन। ये इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन। तो सबसे पहले जब तक आप आत्मा नहीं बनेंगे तब तक बाबा के साथ योग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, बातें करो। अगर हमें योग नहीं लगता है तो क्या करो, अपने आप से बातें करो, मैं कौन हूं, मैं यहां किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है, योग लगाना है तो योग लगाना है तो क्या करना है, किससे योग लगाना है, बाबा से योग लगाना है। बाबा कहां है, परंदाम है, वो कैसा है, निराकार है, मैं कैसा हूं, ऐसे बात करते हो, ये भी योग हो गया, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। तो मुझे बाबा के में क्या संबंध है, तो संबंधों को याद करो, बाबा मेरा पिता है, मेरे शिक्षक है। मतलब योग को कठिन मत बनाओ। हम सबसे पहले हम योग के बारे में ना हमारे समझ थोड़ा सा अलग बना देते हैं, जैसे लौकिक में योग होता है ना, तो योग माना भाई हठ योग करना चाहिए, अब बहुत स्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं। योग को सहज बनाओ, योग माना बस भाई अपने माँ बाप को याद करना। जब मैं ज्ञान में आया था तो फिर मैं मुझे 7 डेज कोर्स पूरा किया तो मैंने अपनी दीदी से पूछा योग कैसे लगाए, तो योग क्या ये हट योग है क्या ये बताने के लिए वो कर। योग को बच्चा अपने माँ बाप को कैसे याद करता है ऐसा याद करो। हमने कोई योग सिखा है नहीं तो हम सोचने लगे माँ बाप को कैसे याद करते हैं, वो तो अनुभव होता है ना, तो अनुभव करते रहते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते रहते हैं फिर भी क्या करते हैं माँ को याद करते हैं, बैठे हैं स्कूल में याद करते हैं किसको मम्मी पापा को। तो उसी समय ऐसी प्रकार इसी तरह हम भी अपने माँ बाप को सहज रीति से याद करते चलो तो क्या होता है प्यार भी नेचुरल होता है। तो इस तरह अपने योग को खुद ही तैयार करो। कई लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है योग करना, पूछते हैं भाई साहब आप एक तरह योग बताते हो ऐसा करो, दूसरे क्लास कराते हो और दूसरे बताते हैं, तीसरे कराते हो तो और तीसरे योग कराते हैं। जो भी व्यक्ति आपको सुनाएगा अपना अनुभव सुनाएगा तो आप क्या करो उसको जो आपको अच्छा लगता है या वो जो सुनाता है उसको भी आप अभ्यास करो प्रैक्टिस करो। ये अलग तरह का योग हो गया ना, तो विभिन्न जितना जितना आप अलग अलग तरह से आप योग करते हैं अलग अलग तरह के अनुभव करते हैं। तो फिर उसके बाद सबके सुनने के बाद सबका करने के बाद फिर अपना एक योग तैयार करो। मुझे कैसा करना है, मैं बाबा के मुझे कौन सा संबंध से बहुत प्यार है, मुझे बाबा से बाप का संबंध बहुत प्यार है या माँ का संबंध बहुत प्यार है। तो इस भाई को बाबा से ये संबंध प्यारा है तो मुझे कौन सा संबंध प्यारा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक संबंध बहुत प्यारा होता है। जैसे बेटी को कोई बेटी माँ से बहुत प्यार करती है, कोई बेटी बाप से बहुत प्यार करती है, कोई बेटा बाप से बहुत प्यार करता है माँ से बहुत प्यार कोई। तो उस तरह मेरा प्यार किससे ज्यादा है तो उस पॉइंट को आप ढूंढ के बाबा को उस रूप से याद करो तो वो आनंद लगे। तो कल भी बाबा ने बोला बच्चे तुम मेरे बच्चे हो और मैं भी बच्चा हूं। तो बच्चा बनाना मतलब क्या होता है, ठीक है आप बाबा का आप बच्चा बनाएंगे, हम तो बच्चे है ही, बाबा कहते मुझे बच्चे बनाओ। तो बाबा कहने का मतलब क्या है, बच्चा बनाना सिर्फ उससे हम प्यार करना, सिर्फ उसको उसकी पालना करना है? क्या है बच्चा बनाना माने क्या है भगवान को? माता बोलो और कौन बताएंगे बाबा को बच्चा बनाने का अर्थ क्या है? अपना वारिस बनाना, अपने को वारिस बनाना, अपना वारिस बनाना, मेरे पास जितने भी जो संपत्ति है उसको देना। और भाई लोग बताओ शिव बाबा का अपना बच्चा बनाया होगा ना, क्या सोचते हैं? जैसे आप लौकी की बेटा है, इकलौता बेटा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके प्रति आपका नजरिया आपका व्यवहार कैसा रहता है, कोई सुनाओ उसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं बताओ। पिता है माता लोग तो बता दे अपना, हम गोद में लेंगे प्यार करेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, जो भी अच्छी चीज आएगी तो उसके लिए निकाल के रखेंगे, हाँ आते ही गले लगा लेंगे। तो पिता है क्या करते हैं सुनाई अपना अनुभव सुनाई। बच्चे के पालना का हर तरह कैसे पालना करें, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बौद्धिक रूप से और स्थूल प्रॉपर्टी के रूप से हर एंगल से हम सोचते हैं बच्चे के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या अच्छे से अच्छा कर सेवा कर सकता हूं। तो उसी प्रकार भाई लोग क्या करना चाहिए, जो आपका बच्चा है ना या सबसे बड़ा समझिए सबसे छोटा समझिए, उसके जो है घर कौन सा, सेवा केंद्र, उसके बारे में हर तरह से सोचना चाहिए, आर्थिक रूप से, स्थूल रूप से, सेंटर के रूप से, सेवा के रूप से, सब तरफ से, सब रूप से मैं बाबा के लिए क्या कर सकता हूं, तन मन धन जन चारों रूप से। जैसे माता है अपने बच्चे के लिए खाना निकाल कर रखते है, खाना बना कर रखते है, उसी प्रकार यज्ञ के लिए मैं कौन सी खाने की चीजें भर दू, बाबा को सेवा करूं, बाबा को दू, बाबा के घर में पहुंचाऊं, ये सारे सोचती है ना और करती भी है। वैसे भाई लोग भी मेरी प्रॉपर्टी बाबा के लिए कितना यूजफुल, कितना सहयोगी बन सकता है, ये बाबा को बच्चा बनाने का। तो फिर आज बाबा ने क्या कहा, स्नेह के बारे में बाबा ने बताया, लगन, जहां लगन होता है वहां सब विघ्न खत्म हो जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। लगन माना क्या है, और होता है लगन माना क्या है, बोलो कुमार भाई, लगन माना क्या है, बाबा के,
बाबा के अलावा कुछ ना कोई दिखाई दे ना कुछ सुनाई दे,
नहीं दिखाया जाना, हाँ आप बताओ लगन का अर्थ क्या है, प्यार, बताओ बोलो, बोलना चाहिए। क्या होता है बाबा के जो ज्ञान को है ना, सुनने से तथा सुनाने से, मुंह खुलने से अनुभव होता है, पक्का हो जाता है। इसलिए ज्ञान की बातें सुनने में और सुनाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपना अनुभव सुनाने से खुद को भी क्या होता है, हाँ मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, ये खुद को पता पड़ता है। और मैं अगर अनुभव करता हूं तो उसको सुन के दूसरा अगर वो भी करने लगे तो उसको भी फायदा, उसका फल आपको भी मिलता है। इसलिए अनुभव सुनाने में सुनने में संकोच नहीं करना। लगन का अर्थ दो है, एक लगन है डूब जाना, एक लगन है संबंध। आपको पता है वो लगन एक संस्कृत शब्द है, वहां कई जगहों में स्थानों में बता शादी के लिए लगन बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा बे आज हमारे घर में लगन है, लगन जिसको संस्कृत शब्द, लगन माना संबंध। जैसे लौकिक में दो व्यक्तियों के संबंध को लगन बोलते हैं, यहां आत्मा और परमात्मा के प्यार भरा संबंध को लगन बोलते हैं। जितना हम बाबा के प्यार में डूबे रहते हैं, उस संबंध में समाये रहते हैं, उतना मग्नावस्था आ जाता है। इसलिए कहते हैं लगन में मगन रहना ही क्या है, योग। योग का बहुत सिंपल परिभाषा है, साधा उसके व्याख्या है, बाबा के लगन में मगन रहना ही योग। अगर योग में आप अनुभव करना चाहते हैं, योग में कुछ प्राप्ति पाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, लव में लीन होना पड़ेगा, बाप कहते लगन में मगन होना पड़ेगा। जब लगन में मगन होते हैं सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। और बाबा ने क्या बोला, एक स्मृति, समय, स्मृति को नहीं भूलना, और समय को नहीं भूलना। कौन सा समय? वो घड़ी, वो घड़ी भूलना नहीं, वो दिन याद करो, है ना। कोई गीत हमने कहीं सुनते थे स्टूडेंट लाइफ, वो दिन याद करो, वो सुहावन घड़ी भूलो नहीं। वो मंगल मिलन की जो घड़ी थी, वो दो घड़ी उसको भूलो नहीं, वो याद करो, वो सबसे सुखद घड़ी है। बाबा ने किसको कंपेयर किया, बेंड किससे किया उसको? वो जो बाबा के साथ का जो मिलन की जो घड़ी थी, वो घड़ी को किसके साथ बेंड किया? उससे भी बहुत श्रेष्ठ है ये। हाँ, स्वर्ग के जो जो है ना, वहां से भी ये संगम की जो घड़ी, जो मिलन की घड़ी है, वो बहुत श्रेष्ठ, वो नहीं भूलना। तो आज के बाबा का क्या पाठ पक्का था? भूलो नहीं, वो दिन याद करो, भूलो नहीं। इससे प्राप्ति क्या होती है? बाबा ने कहा संगम से जो प्राप्ति होती है वो कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर क्या होता है? बाबा का ये ज्ञान का, गुणों का, योग का, सेवा का, इसका फल मिलता है। और क्या कहा बाबा ने? और किसी को याद है? बच्चों को बृहस्पति दशा है। हाँ, अलग अलग अनुभूतियां करो। हाँ, बैंड और नगाड़ा दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएंगे? बैंड कब बजाया जाता है, नगाड़ा कब बजाया जाता है? बैंड कहाँ बजाया जाता है, नगाड़ा कहाँ बजाया जाता है? बैंड, बैंड बजते हैं ना, बैंड, बैंड नहीं बजाते शादी में बैंड। नगाड़ा कहाँ कब बजाते हैं? देखो बाबा ने कितना है, तो छोटी सी बात, लेकिन कितना बढ़िया बाबा ने राज बताया। अभी बच्चे सिर्फ बैंड बजा रहे हैं, नगाड़ा नहीं बजाया। बैंड बजाना माना सिंपल कॉमन हो गया। वो पुलिस वाला भी बैंड बजाते हैं, मिलिट्री वाले भी बैंड बजाते हैं, शादी मुरादी में भी बैंड बजाते हैं। मतलब आवाज किया, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन नगाड़ा कब बजाते हैं? जब पूजा करनी होती है ना। नगाड़ा वहां बजाया जाता है मंदिरों में। नगाड़ा तब बजाया जाता है जब परमात्मा के जो है ना गुणगान करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बहुत अच्छी सेवा की है। कौन सी? आवाज करने की। अभी क्या करो? सारी दुनिया में यही है, यही है और यही है, यह एक ही है, यही है, यही है। अर्थात भगवान यहां ही है, यही भगवान है, ये एक ही भगवान है, उसकी महिमा होने, इसको नगाड़ा कहते हैं। ये बच्चों को तो ये कैसा होगा, उसको भी बाबा ने बताया, युक्ति बताई। इसके लिए क्या करना है? बाबा ने कि इसके लिए बोला आपको जो मिला है क्या करना है? बांटो, दूसरों को भी बांटो। जो आपने सुख शांति पवित्रता आनंद प्रेम ये सारा बाप से पाया है ना, इसको बांटो, क्योंकि दुनिया में इसकी आवश्यकता बहुत है। ज्ञान सुनाने वाले बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे भाषण करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपके पास जो है शक्ति या गुण उनके पास नहीं है। आप खुशियों का दान करो, गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो, तब लोग परिवर्तन होंगे। तो ये हम कौन कर सकता है? शक्तियों का दान, गुणों का दान, खुशियों का दान कौन कर सकता है? जब खुद हमारे में हो। धारण करना क्या है ही हमारे में? उतारना क्या है? आत्मा में नहीं है क्या? आत्मा का गुणधर्म क्या है?
हाँ,
तो उसको जागृत करना है, विकसित करना है। इसलिए बाबा करते हैं, अगर जो दूसरों को सुख देने वाले, खुश करने वाले, कभी खुद दुखी और अशांत होते हैं क्या? तो माताएं आप ये बताओ, ज्ञान में आने के बाद कोई भी आंसू नहीं बहाए, हाथ उठा, रोए नहीं बिल्कुल? हाँ, पहले भले पहले छुट्टी है, वो अलग है, प्यार से रोना अलग बात है, दुख से रोना। उसको तो रोना नहीं कहते, वो तो प्यार है। भाई लोग किसने रोया नहीं? बाबा इसलिए कहते कभी नहीं रोना, जो रोया वो खोया। और एक बाबा ने बताई कि झूले में झूलो। झूले कौन से पता है? बोलो एक एक पता। एक है अतीन्द्रिय सुख का झूला, दूसरा स्नेह का झूला, प्यार का झूला, और गुणों का झूला, आनंद का झूला, सुखों का झूला, शक्तियों का झूला। इस झूलों में झूलते रहो और दूसरों को भी झूलना सिखाओ। ठीक है, आज बाबा ने तीन बातें पक्का कराई। कौन सी? सदा स्मृति, कभी भी विस्मृति में नहीं रहना। स्मृति रखो, क्या स्मृति रखो? समय को। कौन सा समय? वो दिन याद करो, वो सुहावना घड़ी जब आप बाबा को समझा, अपनाया, माना, और दूसरा जब बाबा को पहली बार मिले साकार में, और भाग्य प्राप्ति, बाबा मिलने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है। ये तीन बातों को आप याद रखेंगे तो कभी भी जीवन में, ईश्वरीय जीवन में निराशा, हताशा, उदास आएंगे नहीं। ठीक है, ओम शांति। प्रभु का ध्यान।